ओम शांति, ओम शांति। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में अथक सेवाधारी योगी तपस्वी बाप दादा का राइट हैंड आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित थे। आपका हम एक हाथ की ताली से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे बाबा की मुरली में बाबा का प्यार झलकता है, ऐसे ही बाबा की टोली भी बच्चों को बाबा के असीम प्यार की अनुभूति कराती है। तो ऐसे बाबा के बेहद के भंडारे में टोली डिपार्टमेंट की सेवाओं के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है। आपके पवित्र योगी तपस्वी जीवन के लिए बाबा ने आपको इस सेवा की सौगात दी है, ताकि योग युक्त वाइब्रेशन से भरी हुई टोली से सारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे पक्के योगी बन जाएं। आपने अपनी युवा अवस्था में 1972 को ईश्वरीय ज्ञान महाराष्ट्र के नागपुर से प्राप्त किया। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से 73 में एमएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 76 में अपना जीवन ईश्वरीय यज्ञ सेवा में समर्पित किया। आप कुमारों के लिए एक विशेष प्रेरणा स्रोत हो। कुमारों को पवित्र योगी सशक्त और अथक सेवाधारी बनाने के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं, और बाप दादा मिलन के समय आपके द्वारा कुमारों के प्रति विशेष क्लास कराई जाती है। आप युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक भी हैं। योग के विशेष प्रयोग करना और कराना, योग के अनुभवी बनना और बनाना आपकी सेवाओं का विशिष्ट अंग है। इसलिए भारत के पूरे राज्यों सहित 90 देशों में भ्रमण करके आप राज्यों के गुह्य रहस्य अनेक आत्माओं के आगे स्पष्ट करने के निमित्त बने। मधुबन एवं अनेक सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली गहन अनुभूति योग तपस्या भट्टी में आप वरिष्ठ राज्यों का प्रशिक्षक की भूमिका निभाते आए हैं। दूरदर्शन एवं रेडियो पर आपके आध्यात्मिक वक्तव्य एवं इंटरव्यू के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। तो ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी आज हमारे आगे यह रहस्य स्पष्ट करेंगे कि ब्राह्मणों की चढ़ती कला से सारे विश्व का कैसे भला हो। तो हम सुनेंगे आदरणीय भाई जी से। ओम शांति,
ओम शांति। उड़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, वरदानों के सागर बाबा ने वर्तमान समय को उड़ती कला का वरदान दिया है, क्योंकि समय थोड़ा है, मंजिल दूर है, लंबी है, इसलिए उड़ती कला में उड़ने का एक ही रास्ता है। चढ़ती कला, चलती कला के आगे अभी उड़ती कला। उड़ती कला अर्थात एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी डाल से उड़कर परम धाम में बाबा के पास बैठ जाए, याद में खो जाए। एक सेकंड में देह से न्यारा और बाबा का प्यारा। लेकिन उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए हमें उड़ता पंछी बनना जरूरी है। उड़ते पंछी को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं हम उड़ते हुए, तो हमें भी ऐसा लगता है काश मुझे भी ऐसा उड़ने का आनंद मिलता तो बहुत अच्छा होता है ना। तो उड़ता पंछी की विशेषता पहली ये होती है, उसके पंख उमंग और उत्साह के बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि जितना पंख मजबूत होते हैं उतनी ऊंची उड़ान हम उड़ते हैं। तो आध्यात्म आकाश में ऊंची उड़ान उड़ने के लिए हमारे जो पंख है उमंग उत्साह के वो बहुत मजबूत होते रहना जरूरी है। उसके लिए सदा खुशी में हम झूमते रहें, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहें। लेकिन सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए आवश्यकता है समान के सिंहासन पर सारे दिन भर पे डटे रहना, बैठे रहना। बाबा ने हमें ये ऊंचा सिंहासन समान का दिया है, जब समान में स्थित होते हैं सिंहासन पर बैठते हैं तो ईश्वरीय नशे की ईश्वरीय खुशी की अनुभूति हमें होने लगती है और उमंग उत्साह हमारा बढ़ता जाता है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। तो सारे दिन भर में माया कितना भी अपोजिशन करें, हमें ये सिंहासन समान का नहीं छोड़ना है, ये भगवान ने दिया है हमें। और दूसरा, अपने भाग्य के गीत गाते रहें तो उमंग उत्साह में सदा झूमते रहते हैं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है, जितना चाहे मैं भाग्य लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं। तो अपने भाग्य के गीत गाते रहते हैं, समान में स्थित रहते हैं तो उमंग उत्साह के पंख मजबूत होते जाते हैं। दूसरी विशेषता है उड़ते पंछी की, वो हमेशा हल्का रहता है। हल्की चीज ऑटोमेटिक ऊपर उड़ने लगती है, जाने लगती है। हल्की अर्थात है लकी। जो आत्मा सदा हल्की रहती है वो उड़ती रहती है, बाबा के पास जाती है और खजाने लूटती है और अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी हमें बाबा ने दी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने हल्का रहना है। बहुत सुंदर युक्ति है उसके लिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है वो हमें बाबा के कंधे पर रखना है और खुद को छोटा बच्चा समझकर हल्का रहना है। बाबा कहते मैं आया ही हूं आपको हल्का रखने के लिए। मैं देख रहा था द्वापर युग से अपने सिर पर कितना बोझ ढोते थे, तो मैंने सोचा मैं जब धरती पर जाऊंगा तो मेरे बच्चों को मैं सदा लाइट रखूंगा, हल्का रखूंगा। बाबा को हम बोझ दे देते हैं जिम्मेदारी का, लेकिन वापस ले लेते हैं। संशय आता है पता नहीं बाबा मुझे मदद करेगा या नहीं, उसके कारण देते हैं जिम्मेदारी का बोझ और वापस लेते हैं और बोझिल अनुभव करते हैं। तो एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। कुली हमेशा बोझ ढोते रहते हैं, लेकिन जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो बहुत रॉयल होते हैं और हल्के रहते हैं। तीसरी विशेषता है, उड़ता पंछी साइट सीन देखने में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए उड़ता रहता है। थोड़ा भी साइट सीन में हम रुचि रखेंगे तो स्पीड उड़ने की कम होती है। साइट सीन देखने में रुचि रखना अर्थात दुनियावी समाचार में दिलचस्पी रखना, उसके लेन देन करना, उसमें टाइम अपना गवाना, ये साइट सीन देखना है। हमें पता है दुनिया में क्या होने वाला है, सब कुछ बाबा ने बता दिया है, इसलिए उड़ता पंछी साइट सीन नहीं देखता है, उसमें रुचि नहीं रखता है, इसलिए उड़ता ही वो रहता है। और चौथी विशेषता है, उड़ते पंछी की एक आंख में बाबा और दूसरे आंख में संपूर्णता की मंजिल सदा होती है। बाबा की याद से मुझे संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है, बाबा की याद से हमें शक्तियां मिलती रहेगी, खजाने मिलते रहेंगे, जितने खजाने माला माल होते जाएंगे उतना हम संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे, लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसलिए वो किसी को नहीं देखता है, केवल बाबा को और अपनी मंजिल को देखता है। क्योंकि जितना हम दूसरों को देखते हैं उतना स्वयं पर ध्यान हमारा कम हो जाता है। हम सभी हीरो एक्टर बैठे हैं, एक भी इसमें साधारण एक्टर नहीं है, बहुत हीरो एक्टर हैं, ऊंचे पहाड़धारी हैं। हीरो एक्टर जो होता है वो दूसरों को नहीं देखता है, सभी उसको देखते हैं, उसका अपने पर पूरा अटेंशन रहता है, इसलिए हर एक एक्ट उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, विशेष होती है ना। तो इसलिए उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए, उड़ता पंछी बनने के लिए इन खजानों को, इन विशेषताओं को हमने धारण करना है। उड़ती कला जब हमें याद आती है तो कुछ बातें हमारे दिल में चलने लगती हैं। पहली बात, ना होगी उड़ती कला तो माया पकड़ेगी गला। उड़ती कला नहीं होगी तो इसी दुनिया में, पुरानी दुनिया में रहेंगे, मायावी दुनिया में रहेंगे, तो माया हमारा गला पकड़ेगी, हमारे पर वार करेगी। उड़ती कला माना ही देह से न्यारा एक सेकंड में होना। जितना रहते हैं देह से न्यारा उतना चमकता है भाग्य का सितारा। माया हमारे पास आती है, बॉक्सिंग करने के लिए आती है, गला पकड़ती है, नीचे गिराती है और बहुत अच्छी तरह से पिटाई करती है, बेहोश करने का प्रयास करती। हमें आत्मा हूं ये होश भी हमारा वह उड़ा देती है। तो उड़ती कला में रहेंगे तो माया हमारे पास आ नहीं सकती है। हम विजय के नशे में मस्ती में झूमते रहते हैं। दूसरी बात, उड़ती कला तेरे बहाने कमियां छोड़ता चला। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, इसलिए जो भी आत्मा में कमियां हैं, खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको हमने छोड़े ना है, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है, कमी कमाई करने नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? खुद की कमी होगी तो पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, और दूसरे की कमी देखेंगे तो उसका मन चिंतन चलेगा, बाबा की याद नहीं होगी, कमाई नहीं होगी। इसलिए हमें किसी की कमी देखना ही नहीं है। देखना है तो हरेक आत्मा के रूहे गुलाब से मधु लेना है, हमने मधुमक्खी समझकर मधु लेना है, विशेषता लेना है, कला को लेना है, न कि किचड़े को, कमी को लेना है। किस कमी को देखते रहेंगे तो ये मेरी बुद्धि डस्टबिन बन जाएगी, योग कहां लगेगा? इसलिए उड़ती कला तेरे बहाने कमियां छोड़ता चला। सभी कमियां निकालना चाहते हैं, और हम उसको देखकर अपने में भरना चाहेंगे, अपने में ग्रहण करना चाहेंगे, तो कितने समझदार हम समझेंगे बोलो। तीसरी बात, उड़ती कला तेरे बहाने सर्व के प्रति शुभ भावना रखता चला। उड़ती कला में उड़ने के लिए हमेशा सबके प्रति शुभ भावना हमें रखना है। अशुभ भावना होगी तो ईर्ष्या द्वेष होगा, हमारी बुद्धि वहां जाएगी, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, अशुद्ध संकल्प चलेंगे। हमें क्या लेना देना है किसी से? हमें तो बाबा से लेना है अपना वर्षा। इसलिए सबके प्रति शुभ भावना हमें रखना है, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यवहार करें, हमने शुभ भावना रखते जाना है। ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। किसी एक आत्मा के प्रति भी अशुभ भावना होती है तो संपूर्ण पवित्रता का सर्टिफिकेट मेरा बाबा के पास अटका हुआ है, मुझे नहीं मिल रहा है, उस एक व्यक्ति के कारण। इसलिए बड़ा व्यक्ति जो होता है, उसका बड़ा दिल होता है, उसके दिल में क्षमा भावना सदा पनपती रहती है, इसलिए वो सर्व के प्रति शुभ भावना रखता जाता है, रखता जाता है। बहुत सुंदर युक्ति है उसके लिए, वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप किसी का हमें देखना नहीं है, देखना है तो उसका आदि अनादि स्वरूप आत्मा का देखना है और अंतिम स्वरूप देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी, सत्वप्रधान आई थी, एकदम संपूर्ण बंध अवस्था में आई थी, और जाएगी भी तो फरिश्ता स्थिति में जाएगी, उसके प्रति अशुभ भावना चल ही नहीं सकती है। वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो सब में कमियां है, एक संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी होगी तो हम ब्रह्मा जी के पास बैठ जाते ऊपर, है ना? इसलिए सबके प्रति शुभ भावना हमें रखना है। मेरा जीवन बहती नदी की धारा की तरह है, मेरा जीवन है, चलना ही मेरा कर्म है, सेवा करना हमारा धर्म है, बस चलते रहना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आए उसकी सेवा मुझे करना है। अभी उड़ती कला को अच्छी तरह से हमें मेंटेन करना है सारे दिन भर में, तो उसके लिए क्या करना है? थोड़ा समय है तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, तभी तो हम, समय की रफ्तार तेज है तो पुरुषार्थ की रफ्तार भी हमें तेज करनी होगी। उसके लिए पहली बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए मनसा पवित्रता को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। पवित्रता का बहुत गहरा कनेक्शन उड़ती कला के साथ है। वैज्ञानिक जब रॉकेट किसी ग्रह पर छोड़ते हैं तो उसका पेट्रोल अल्ट्रा रिफाइन होता है, बहुत एक्स्ट्रा रिफाइन होता है, उसको कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। तो ऐसा बुद्धि रूपी रॉकेट जो है हम बाबा के पास ले जाना चाहते हैं तेजी से, तो उसका पेट्रोल पवित्रता का बहुत रिफाइन होना चाहिए। ये उसका पेट्रोल है पवित्रता की शक्ति। इसलिए ब्रह्मा बाप समान हमें बहुत ऊंची पवित्रता की स्थिति बनाना है। पवित्रता का स्तंभ, शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, ये बाबा की स्थिति है। पवित्रता की सारे संसार में सबसे ऊंची स्थिति मेरे बाप की है। ब्रह्मा बापा मेरा बाप है। जिसके बाप की इतनी ऊंची स्थिति है तो उसके भी तो हो गई ना। अमीर का बच्चा अमीर ही होता है, फकीर नहीं होता है, गरीब नहीं होता है। इसलिए हमेशा याद रखना है, मेरा बाप पवित्रता का सागर है शिव, मेरी माँ ब्रह्मा माँ पवित्रता की सागर है, मेरा जन्म पवित्रता के द्वारा हुआ है, तो मैं हूं ही पवित्र बच्चा। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होता है तो बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति हमारी हम मेंटेन करने लगते हैं। ठीक है, मैं पवित्रता की देवी हूं या मैं पवित्रता का देवता हूं, जहां मैं जाता हूं वहां पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने की ड्यूटी मुझे पवित्रता के सागर बाप ने दी है। ऑफिस में जा रहे, घर में जा रहे, दुकान जा रहे, कहीं पर भी जा रहे, मेरे पवित्रता के वाइब्रेशन के द्वारा मैं चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करता रहता हूं। कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, समझा। दूसरी बात है, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए मैं आत्मा इस पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में गेस्ट हूं। इस गेस्ट हाउस में मैं गेस्ट हूं। जब मेहमान समझते हैं तो स्थिति हमारी महान ऑटोमेटिक बनती है। गेस्ट हाउस में आप जाएंगे ना, किसी भी चीज से आपका लगाव नहीं होगा, क्योंकि गेस्ट हाउस है, थोड़े समय के लिए मेहमान हूं मैं। चाहे सोने के चमचमाते दरवाजे होंगे, खिड़कियां होगी, फिर भी जो चैन की नींद आपको अपने घर में आएगी वो गेस्ट हाउस में नहीं आएगी, रेस्ट हाउस में आएगी, परमधाम में। तो गेस्ट हाउस में मैं थोड़े समय का गेस्ट हूं, ऐसा अनुभव करने से हम डिटैच रहते हैं और बाबा से बुद्धि अटैच रहती है और उड़ती कला की अनुभूति स्वतः ही हमें होने लगती है। विमान में उड़ते हैं तो कितना आनंद आता है, हम उड़ रहे हैं, दुनिया नीचे है, बड़े बड़े बिल्डिंगे इतनी छोटी छोटी डिब्बी की तरह लगती है, कारें डिब्बी की तरह लगती है, तो स्थिति हमारी बहुत ऊंची होती है उड़ती कला की। तो ये नीचे वाली दुनिया पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, कोई बातें हमारे इसलिए समस्या के रूप में आ भी नहीं सकती है। गेस्ट हाउस में हूं, तीसरी बात है, सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए तीन ड्रेसेस सारे दिन भर में हमें पहनकर रखना है। इस शरीर का ड्रेस हमें नीचे लाता है, ये बॉडी ने हमें कौड़ी बना दिया है। लाएगा ना, ये 60 किलो वजन वाला शरीर, ये छोटी सी आत्मा बिंदु है, लाइट है, और उसको जो भान रूपी धागे से ये 50-60 किलो का वजन हमने टांग के रखा है, कैसे जाएंगे ऊपर। इसको धागे को काट दो ज्ञान और योग की चक्कैंसी से, भान देह भान रूपी धागे को, तो ऑटोमेटिक आत्मा एक सेकंड में बाबा के पास। तो उड़ती कला को ये ड्रेसेस तीन पहनाना है हमें, ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, परिस्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आपके पास हैं, अलमारी में रखकर देखने से खुशी होगी या पहनने से जास्ती खुशी होगी? पहनने से खुशी होगी। तो हमारा जो साजन है, हम सभी सजनियां हैं उसकी, हम सजनियों को उन्होंने तीन ड्रेसेस पहनने के लिए दिए हैं, मेरी सजनियां बहुत सुंदर बनती जाएं। इसलिए ये बुद्धि रूपी अलमारी में नहीं रखना है, उसको हमने पहनना है। सारे दिन भर में ये विभिन्न ड्रेसेस पहनना है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपना बड़प्पन कैसा दिखाते, बार बार ड्रेस चेंज करते जाएंगे। सवेरे अलग ड्रेस, ना भोजन पर अलग ड्रेस, फिर दिन में अलग ड्रेस, शाम को अलग, बताएंगे मैं बहुत बड़ा हूं। अरे हम बड़े बाप के बड़े बच्चे तो हम भी हैं, तो हमें भी अलग अलग ड्रेसेस सारे दिन भर में पहनना है। उससे क्या होगा, हमारे देवता स्वरूप फरिश्ता स्वरूप के संस्कार आत्मा में धारण होते जाएंगे। 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी कुछ भी हो फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, कि बाबा जानी जानन हार है, जानते हैं मेरे बच्चों को फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी होगी, इसलिए पहले से ही बाबा हमें तैयार करना चाहते हैं। ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस भी पहनेंगे तो अभी आप अपने नशे में मस्ती में झूमते रहेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता सबसे बड़ी हस्ती मुझे मिली है, नशे में झूमते रहेंगे, चेहरा आपका दिखेगा कि इसको कुछ मिला हुआ है, जब खुशी में झूमते हैं तो लोग कहते पता नहीं इसको क्या मिला है, इतनी खुशी कहां से मिली इसको? अरे भगवान हमें मिला है तो खुशी नहीं होगी क्या? सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार जिसके इशारे पर चल रहा है, वो मेरा बाप है, तो खुशी नहीं होगी? फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस भी हम पहनेंगे तो फरिश्ता स्थिति के संस्कार ऑटोमेटिक इमर्ज होते जाते हैं। हम देखते हैं 18 जनवरी के दिन मधुबन में आप आएंगे तो ऐसा लगता है ये मधुबन मधुबन नहीं है, ये फरिश्तों की दुनिया ऊपर से इस धरती पर अवतरित हो चुकी है, ऐसा हर कोई अनुभव करता है। सभी बाबा के प्यार में हम खोए रहते हैं, अमृत वेले से चार धाम करते हैं, प्यार में खोए रहते हैं, बहुत अच्छी लाइट हल्की रीति से अनुभव करते हैं और दूसरों को भी फरिश्ता देखते हैं, खुद भी फरिश्ता दूसरे भी फरिश्ता, तो ऐसा लगता है चलते फिरते सारे फरिश्ते ही फरिश्ते यहां नजर आ रहे, इतना पावरफुल वातावरण होता है। तो सेवा के क्षेत्र में जब हम हाजिर होते हैं उस समय ऐसा अनुभव करना है, मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस पहनकर सेवा कर रही हूं, मुझ आत्मा ने देवता स्वरूप की ड्रेस पहनकर मैं अपना विचरण कर रहा हूं, रॉयल्टी से चल रहा हूं, दिव्य गुणों से सजी हुई मेरी आत्मा है, श्रृंगार किया हुआ है, नारायण जैसी लक्ष्मी जैसी ड्रेस मैंने पहनी है, चेहरा ही आपका बदल जाएगा। वो ड्रामा में थोड़े समय के लिए उनको पार्ट देते हैं, लक्ष्मी का नारायण का किसी का, चेहरा एकदम बदल जाता है थोड़े समय के लिए। तो हमें भी आत्मा को ये पहनाना है, जितने पहनाते जाएंगे तो ये शरीर जो है ना साधारण ड्रेस, ये भान उतरता जाएगा, खत्म होता जाएगा, ठीक है ना? चौथी बात, उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए दो शब्दों का परिवर्तन हमें करना है, वाय और वाट, ये दो शब्दों को परिवर्तन करना है। जब भी कोई बात होती है तो हमारे मन में क्यों क्या क्यों ऐसी लाइन लगी रहती है, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, होना नहीं चाहिए, ये अनहोनी बात। बाबा ने पहले ही बता दिया है कि क्या होने वाला है, इसलिए कुछ हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं, कछ हुआ वृत्ति हमें अपनाना है, अंतर्मुक्ता की वृत्ति को अपनाना है। हमेशा देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो दरवाजे पर कछुए का चिन्ह दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, ये जो अंदर देवी देवता खड़े हैं ये कैसे बने हैं, संगम युग पर इन्होंने कछुआ वृत्ति अंतर्मुक्ता की वृत्ति को अपनाकर अंतर ध्यान में परमात्मा के ध्यान में रहते थे, इसलिए ये इतने महान बन गए हैं। तो हमें भी वाय को फ्लाई में परिवर्तन करना है, उड़ती कला में उड़ते रहना है, फ्लाई में परिवर्तन करना है। और व्हाट शब्दों को व्हाइट में परिवर्तन करना है। व्हाइट शब्द ये फरिश्ते का यादगार है, शांति का यादगार है, पवित्रता का यादगार है। तुम्हें व्हाट को व्हाइट में परिवर्तन करना है और वाई को फ्लाई में परिवर्तन करना है। तो धीरे धीरे हमारी उड़ती कला की अनुभूति बढ़ती जाएगी, है ना? क्योंकि अभी समय है उड़ते रहने का। लास्ट सो फास्ट बाबा क्यों कहते हैं, जो अभी अभी नए नए बच्चे हैं उड़ते कला में उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और जो पुराने हैं वो धीमे गति से सुस्ती से आलस अलबेले होके चल रहे हैं, तो वो तो आगे नंबर लेंगे ना। हमेशा एक एक दृश्य सामने रखो आध्यात्मिक रेस का, स्पिरिचुअल रेस का। अभी संगम युग में आध्यात्मिक दौड़ चल रही है, 15-20 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें मुझे भी भगवान ने दौड़ने का चांस दिया है। अभी इसमें केवल मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे विनर बनना है, रनर के साथ। मैराथन में जो विनर बना उसको देखकर कितनी खुशी हो रही थी, इतना लंबी यात्रा में दौड़कर उसने प्राइज लिया इतना। तो जो रनर में आगे होते हैं दौड़ में, तो उसको प्राइज मिलेगा ना बाबा से। ये दर्श अगर सामने रखेंगे तो आपके पास कभी सुस्ती आलस अलबेलापन आ नहीं सकता है, फटक नहीं सकता है। हम सभी रेस के घोड़े हैं। तो ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से एक बार जरा। कोई कोई आंखें बंद कर रहे हैं ना इसलिए। तो हमें क्या करना है, पांचवी बात है, उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए दुआओं का खजाना जमा करना है। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। ये जितना चाहे हम दुआओं को जमा कर सकते हैं। बाबा ने कहा बैंक जो है ना, जमा की बैंक केवल संगम युग में ही खुलती है, बाकी किसी युग में जमा का बैंक नहीं खुलती है, होती ही नहीं है, खुलती ही नहीं है। तो संगम युग में जमा के बैंक में मुझे बहुत जमा करना है। ये जमाना कैसा है, जमाना कैसा है, जमा ना, जमा होने ही नहीं देता है, बुद्धि ऊपर जाने ही नहीं देता, इधर उधर जाएंगे आंखें फाड़ के देखते रहेंगे कितनी बढ़िया चीज है ये सारी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना है, देखना है तो बाबा को ही देखना है। जमा की बैंक में मुझे खूब जमा करने हैं खजाने। तो दुआओं का खजाना जमा करने का गोल्डन चांस हमें दिया है। सेवा और सिवा, सेवा और सिवा, ये दो बातों के बजाय मुझे तीसरी बात दिखाई नहीं देती है। मेरे पास टाइम ही नहीं है दो बातों के लिए। या तो शिव बाबा की याद या शिव बाबा की सेवा। जो करते हैं सेवा में हाजी, उस उन पर होता है ऊपर वाला हाजी। देखो तो जो भी सेवा मिले हाजी हाजी बाबा हाजी बाबा। झाड़ू लगाने की मिले ना, बहुत भाग्य ऊंचा आपका, क्योंकि संगम युग में ये ईश्वरीय यज्ञ की सेवा कर रहे हैं हम। किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी धर्मशाला में नहीं सेवा कर रहे, भगवान के यज्ञ में कर रहे हैं। कमाई हो रही है। भाषण करना ही अच्छी सेवा नहीं है, झाड़ू लगाना, भोजन पकाना, ये सिंपल सेवा भी बहुत बड़ी भाग्य की निशानी है। और एक बात याद रखना है, ना जाने जिंदगी में कब आएगा अंधेरा, कभी भी अंधेरा आ सकता है, कभी भी हम बेड पर पड़ सकते हैं, किसी को पता नहीं अंतिम श्वास मेरा कब होगा, कहाँ होगा, कुछ भी हो सकता है। कोरोना में अच्छे अच्छे चले गए, सोचा नहीं था उन्होंने जाएंगे। वर्तमान समय मेरे हाथ में है, उसका पूरा लाभ मुझे लेना है। भविष्य है सपना नहीं, भूत है सपना भूतकाल, और भविष्य है कल्पना, और वर्तमान है अपना। ये मेरे हाथ में है, जितना चाहे मैं इसका लाभ ले सकता हूं। डबल ट्रिपल सेवा करके मैं ले सकता हूं, इसका भाग्य बना सकता हूं। मैं पहली बार 76 में सेवा में आया था तो हिस्ट्री हॉल ही था उस समय, केवल दूसरा कोई हॉल ही नहीं था। हिस्ट्री हॉल में हम 60 सेवाधारी बाबा से मिल रहे थे वहां मुरली के बाद। तो बाबा ने उस समय कहा था 76 में, अभी समय कम है, एक ही साथ ट्रिपल सेवा करो। ट्रिपल सेवा कैसे करेंगे भाई, कर्मणा सेवा कर रहे, फिर दूसरी मनसा के द्वारा सेवा कर रहे, अब तीसरा ट्रिपल सेवा कैसे करेंगे भाई। वाचक किसको ज्ञान देंगे, यहां सभी ज्ञानी है। तो बाबा ने कहा, चेहरे से दिव्य गुणों से श्रृंगार किए हुए चेहरे से दिव्य गुणों की दान करना, यह है ट्रिपल सेवा, तीसरी सेवा। ज्ञानियों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, दिव्य गुणों की दान के द्वारा। तो कहने का मतलब है, जो भी हमें चांस मिलता है हमने छोड़ना नहीं है। जो बहुत तन से सेवा करते हैं ना, उनको स्पेशल गिफ्ट बाबा देते, कौन सी देते बताओ। खुशी तो दूसरों को भी मिलती है, लेकिन जो हड्डियां लगाते हैं ना, उनको बिना हड्डी का फरिश्ता स्वरूप गिफ्ट में मिल जाए, लो तुम्हारी गिफ्ट। दूसरों को मेहनत करनी पड़ती है, उसको गिफ्ट में मिल जाता है फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि हड्डी हड्डी सुहा किया तो बिना हड्डी का फरिश्ता स्वरूप लाइट का गिफ्ट में मिल जाता है, लो तुम्हारी गिफ्ट। तो भगवान किसी का भी रखता नहीं है, जो यज्ञ के लिए एक करता है बाबा उसकी पदम गुणा सेवा कराते हैं, है ना। तो इसलिए बस लगे रहे, मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से संबंध संपर्क, जितने भी बाबा ने चेहरा चलन जो भी साधन दिए, सब साधनों का प्रयोग करना है और दुआओं का खाता बढ़ाना है। क्योंकि दुआएं हमें जब प्राप्त होती है तो एक अजीब सी खुशी होती है, और वो खुशी हमारे योगाभ्यास में चार चांद लगा देती है, समझा। इसलिए हमें दुआओं का खाता खूब जमा करना है। संगम युग में आराम हराम है। सतयुग त्रेता युग में बाबा कहते हैं आपको आराम ही करना है, कुछ करना ही नहीं है, प्रकृति आपको कमाई करके देगी, केवल एक जन्म सेवा करो, एक के जन्म आराम करो, मेवा खाओ, आराम करो, ठीक है ना भाई। तो इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान रखना है और उड़ती कला की अनुभूति करना है। अभी सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी चुस्त बैठेंगे, होंक के बैठ, चुस्त और मस्त 15 मिनट एकदम बाबा की याद में खो जाएंगे, बिल्कुल मस्ती में मस्त बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटि के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता का दिव्य और भव्यता मौस आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह के रूपी पिंजड़े से न्यारी होकर उड़ता पंछी बनकर इस पिंजड़े से बाहर आकर उड़ रहा हूं। फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता ही जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओहो मैं आत्मा उड़ता पंछी फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೋಸ ಆತ್ಮಾರೂಪಿ ಪಂಚೇನೆ ಫರಿಸ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಕಿ ಡ್ರೇಸ್ ತಾರನ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇ. ಕಿತ್ನಿ ಹಲ್ಕಿ ಫುಲ್ಕಿ ಡ್ರೇಸ್ ಅಯ್ಯ. ಫರಿಸ್ತೋ ಕಿ ರಾಜ ಪ್ಯಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಫರಿಸ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಮೇರೆ ಸಮಕ್ಷ ವಿರಾಜಮಾನ ಹೇ. ಮೇರೆ ಅತಿ ಪ್ಯಾರೆ ಅತಿ ಮಿಠೆ ಶಿವ ಬಾಬುಲ್ ಭಿ ಉನ್ಕೆ ಭ್ರುಕುಟಿ ಮೇ ಚಮಕ್ತೆ ಹುಯೇ ವಿರಾಜಮಾನ ಹೇ. ಸ್ನೇಹ ಕೆ ಸಾಗರ ಬಾಬ ದಾದಾ ಮಸ್ಫರಿಸ್ತೇಕೋ ಅತಿ ಸ್ನೇಹ ಭರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೇ ರಹೆ ಮೇ ಫರಿಸ್ತಾ ಬಾಬಾ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಆನಂದ ಲೇ ರಹಾ ಹೂ. ಬಾಬಾ ಸೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ಮೇ ಫರಿಸ್ತಾ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ. ಬಾಬಾ ಕಿ ಜಾದುಯಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಪ್ರಭಾವ ಮುಸ್ ಫರಿಸ್ತೆ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಗಹರಾ ಪಡ ರಹಾ ಹೈ. ಫರಿಸ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋ ಛೋಡ್ಕಾ ಮೇ ಆತ್ಮಾರೂಪಿ ಪಂಚಿ ಪರಮ ಧಾಮ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಓರ್ ಉಡ್ತಾ ಹುವಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೂ ನಿರಾಕಾರಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಪಹುಂಚ ಗಯಾ ಹೂ. ಚಾ ಚಾರೋ ಸುನಹರಿ ಲಾಲ್ ಹಿಲ್ಲಾ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇ. ಶಾಂತಿ ಕಾ ಸನ್ನಾಟ ಛಾಯಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಕಿತ್ನಾ ಪ್ಯಾರಾ ಘರ ಹೈ ಯಹ ಮೇರಾ ಪರಮ ಧಾಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ. ಓಹೋ ಮೇರೆ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭಿ ಪ್ಯಾರೆ ಮೇರೆ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಪ್ಯಾರೆ ಶಿವಪಿತಾ आत्म पंछी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी पंछी बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से देख रहा हूं। बाबा की सुंदर छवि को निहार रहा हूं। बस बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मास आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति, मैं आत्मा रूपी पंछी एकदम लाइट और खुशी से भरपूर हो रहा हूं। उड़ती कला की अनुभूति हो रही है। बाबा 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 मैंने आपसे बात की शक्तियां पा ली बाबा, लेकिन मेरी एक छोटी सी और आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे बाबा, बस जलती ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं बाबा। आपके ही संग में आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा रूपी पंछी बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ता हुआ वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रहा और इस शरीर रूपी डाल पर बैठ चुका हूं। महज शक्तिशाली आत्मा पंछी से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है दमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मास मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ओम शांति शांति शांति।
हम एक बार जोरदार तालियों से भाई जी का धन्यवाद करेंगे और सभी तीन ड्रेस कौन से बताए ब्राह्मण फरिश्ता और देवता हा?